हाथ जोड़कर प्रार्थना में भाग लीजिए। पहले श्रद्धा से सुनिए, फिर सब उच्चारण कीजिए। नमः ओम विष्णु पादाय, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे, गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषाय शून्यवादी, पाश्चात देश तारिणे, गुरवे गौरचंद्राय, राधिका तदाल्ये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय, तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, शिवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हिंद महासागर के बीच में इस रमणीक मॉरिशस द्वीप के उत्तरी भाग नॉर्थ में पिचित रेफिया में शिवानंद सेन और भक्तों की ओर से आयोजित इस कृष्ण कथा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सो कृष्ण कथा, कृष्ण कथा कौन से शास्त्र से मिलेगी? हरे कृष्ण, तो उसका उत्तर है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में 90 अध्यायों में 90 चैप्टर्स में ओनली कृष्ण कथा है। इतनी कृष्ण कथा और किसी शास्त्र में नहीं है। भागवत में तो 335 अध्याय 335 कृष्ण कथा 90 चैप्टर में भागवत के 10th कैंटो में है, और कलयुग के दुखी लोगों को दुख से बचाने के लिए 88,000 ऋषि महात्मा प्रयास कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि क्या करें कि लोग दुखी न हो कलयुग में। कलयुग का अर्थ है कलह का युग, कलह का अर्थ है झगड़ा, छोटी छोटी बात में घर में झगड़ा होता है। और सत्य युग के अंदर एक लोक के लोग दूसरे लोक से झगड़ा करते थे, देवलोक और असुर लोक, पाताल लोक के लोग जो है देवलोक वालों से झगड़ा करते थे। त्रेता युग में एक देश के लोग दूसरे देश से झगड़ा करते थे, और लंका से रावण का झगड़ा और अयोध्या निवासी भगवान श्री रामचंद्र से हुआ। द्वापर युग में दो परिवारों के, दो खानदानों के बीच में झगड़ा हो गया, कौरवों और पांडवों के बीच में। और कलयुग में तो घर घर में झगड़ा, ये कलयुग का अर्थ है घर घर में झगड़ा, कल है छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़ा हो जाता है। इतनी जिंदगी कितनी लंबी है, 60-70 साल जीना है, उस बीच में कितने लोगों से झगड़ा करके अपना टाइम खराब करते हैं। भागवत में तो प्रहलाद महाराज गिनाते हैं कि अगर कोई आदमी 100 साल भी जिए तो 50 साल तो सोने में चले जाते हैं, और 10 साल तो बचपन में चले जाते हैं खेल कूद में, तब तो कुछ पता नहीं रहता है। बुढ़ापे के भी 10-15 साल बेकार के चले जाते हैं, कुछ कर नहीं पाता है, ना आंख से देखता है, ना कान से सुनता है, ना पांव से चल सकता है। तो मिला के 15 या 20 साल मिलते हैं, उसमें भी इतने सारे झगड़ा करके और अपनी जिंदगी को खराब करें, इसका फायदा क्या? ले तो कुछ दुनिया से जाना नहीं है, लाए तो साथ में कुछ है नहीं। दुर्लभ मानव जन्म मिला है जिसमें भगवान को पाना चाहिए, 100 साल में 70-80 साल तो ऐसे बेकार में चले जाते हैं, बचे हुए 20 साल भी और दुनिया में झगड़ा करके भागा दौड़ी में पूरा करते हैं, तो इसने दुर्लभ मानव जन्म का लाभ क्या हुआ? दुर्लभ मानव जन्म बहुत बड़ा दुर्लभ है। 88,000 ऋषि सबका कल्याण करना चाहते थे, सबका भला करना चाहते थे, they want to benefit everybody। यही साधु की पहचान है, दूसरे का भला। नहीं तो श्रील प्रभुपाद को 70 साल की उम्र में वृंदावन जैसे धाम में जहां लोग जाके रहते हैं उसको छोड़ के अमेरिका जाने की क्या जरूरत थी? 70 साल में तो लोग अपने घर से चलना मुश्किल हो जाता है, और किसी को वृंदावन जैसा धाम मिलने के लिए, रहने के लिए मिल जाए, जो भाग्यशाली को मिलता है, लेकिन वहां से अमेरिका में जाने की क्या जरूरत है? लोग बड़े दुखी हैं, इनको कैसे सुखी किया जाए? तमोगुण और रजोगुण ने लोगों को पागल बना दिया है। तमोगुण पागलपन है, नशा करते हैं लोग, पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते, झगड़ा करते हैं केवल, आलसी। और रजोगुण में लोभी है, लालची है, बस धन के लिए सुबह से शाम तक भागा दौड़ी करते हैं, और रात को भोग में लगे रहते हैं, नहीं तो मरे की तरह पड़े रहते हैं, फायदा क्या है? ये भागवत कह रहे, सुखदेव महाराज कह रहे, मैं नहीं कह रहा, सुखदेव महाराज भागवत में परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। ये जो मैं कह रहा हूं, ये श्लोक का अनुवाद कर रहा हूं। तो साधु संत महात्मा का एक ही उद्देश्य है कि ये लोग दुर्लभ मानव जन्म को ऐसा बहुत मुश्किल से मिलता है, उसको बेकार पशुवृत्ति में क्यों पूरा कर रहे हैं? मानव जन्म के लिए क्या करना चाहिए? तपस्या करनी चाहिए। इस पृथ्वी के ऊपर जब सृष्टि को बनाने के लिए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मा जी ने दो ही शब्द सुने, तप तप तप, तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। और फिर भारतवर्ष, वैसे ये पूरी धरती का नाम भारतवर्ष है, जहां भी खारे पानी का समुद्र से घिरा हुआ धरती है उसका नाम भारतवर्ष। और ये भारत वर्ष का नाम भगवान ऋषभ देव के पुत्र महाराज भरत के पीछे भारतवर्ष नाम पड़ा। तो इस भारतवर्ष में महाराज भरत को शिक्षा देते हुए ऋषभ देव कहते हैं, तपो देव्यम पुत्र का, हे मेरे बेटो दिव्य तपस्या करना, मानव जन्म में अनंत सुख को प्राप्त करो। छोटा सुख नहीं, तुच्छ सुख नहीं, अनंत सुख। कौन सा? ब्रह्म सुखम अनंतम, जो आत्मा का आनंद है उसका, उसको प्राप्त करने का प्रयास करो। ये इंद्रियों का सुख आज नहीं तो कल चला जाएगा, ये तो क्षण भंगर है। ये तो पशु पक्षी को भी मिलता है, सुकर कुकर को भी मिलता है, कुत्ते बिल्ले सुअर को भी मिलता है। आत्मा का आनंद मानव को प्राप्त करने का सौभाग्य है, तो उसको कैसे प्राप्त किया जाए? तो ऋषियों ने प्रयास किया। प्रयागराज, जहां तीन पवित्र नदियां इकट्ठी होती हैं, संगम होता है गंगा जमुना और सरस्वती का, वहां बैठा के ऐसा तीर्थ राज है। प्रयागराज को तीर्थ राज कहते हैं, तीर्थों का राजा। तीर्थ कहते हैं वो जगह जहां जाने से पवित्र हो जाए आदमी। तीर्थ का मतलब है पवित्र। तीर्थ करना मतलब टू प्यूरिफाई, पवित्र करना। तो ये जो पवित्र नदियां हैं उसके किनारे के ऊपर भगवान के साधु संत भक्त रहते हैं, हरि कथा कीर्तन होता है, तो स्नान होता है, कथा कीर्तन होता है, तो आदमी पवित्र होता है। तो तीर्थ राज सब तीर्थों का राजा है। कृष्ण कथा में ये बात हमको ध्यान में आ रही है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक हैं, नंदगांव में रह रहे हैं, तो घर में देखें कि माँ यशोदा लड्डू बना रही है, कचौरी बना रही है, सूखा सूखा ड्राई ड्राई प्रसाद बना रही है, मिठाइयां बना रही है। तो कन्हैया ने पूछा, हे मां कि आज बहुत सारे मिठाइयां सूखी क्यों बना रही हो? बोला, बेटा तुम्हारे पिताजी कहते हैं हम तीर्थ राज प्रयाग स्नान करने जाएंगे तो बैलगाड़ियों में जाएंगे, कुछ महीने दिन लगेंगे, 15 दिन 20 दिन महीना लग जाएगा, तो रास्ते के लिए सूखा प्रसाद पहले लो। कहीं पहले तो वैदिक संस्कृति में वैदिक सिविलाइजेशन में बाहर होटलें नहीं होती थी, लोगों को तो कोई आ जाए मेहमान तो प्रेम से बुला के खिलाते थे। अतिथि देवो भव। बड़े बड़े राजा महाराजा, जैसे भी महाभारत में आता है कि युधिष्ठिर महाराज के पास 5,000 भोजन बनाने वाले भोजन बनाते थे, आने वाले लोगों को खिला, कोई आए नगर में सबके लिए प्रसाद होता था। देखो ये भी परंपरा है, यहाँ सत्संग होता है तो प्रसाद होता है। ये प्रसाद ऐसे, ये उसका छोटा नमूना है। आप आए, आपको प्रसाद मिला, बैठो प्रसाद पाओ, सत्संग सुनो। तो ये प्रसाद तो इस तरीके से सबको दिया जाता था, बिकता नहीं था, और लोग अपना खाते थे, नहीं किसी और दूसरे का खाना भी ऐसा नहीं पसंद नहीं करते थे, तो सूखा प्रसाद बना के ले जाना। ओ भगवान ने बोला, अच्छा फिर हम कल जाएंगे प्रयागराज। ठीक है, दूसरे दिन भगवान ने कहा कि कहां, सारे तीर्थ तो हमारे वृंदावन में है, तो और कहां जाना है? तो सुबह सवेले नंद बाबा 3:30 बजे उठ के स्नान करने के लिए एक नंदगांव में है पावन सरोवर। पावन का मतलब पवित्र करने वाला, सरोवर जो सबको पवित्र करता है। नंद बाबा उसमें स्नान करने गए। आप में से जो भाग्यशाली वृंदावन गए हैं, नंदगांव गए हैं, तो नंदगांव में पावन सरोवर। तो नंद बाबा देखता है कि सामने कोई बहुत बड़ा रोशनी है, प्रकाश है, लाइट, और फिर नजदीक आया तो लाइट से एक आदमी जैसा कोई लगाए, कोई व्यक्ति है, पर्सन है, और उसने स्नान किया पावन सरोवर में। तो नंद बाबा ने पास जाके प्रणाम किया और कहा, आप कौन देवता हैं, हमारे नंदगांव में पधारे, आपका स्वागत है। उसने कहा, मैं प्रयागराज हूं, मैं तीर्थ प्रयागराज हूं, सारे तीर्थों का राजा हूं, बहुत से पापी लोग रोज आके मुझ में नहाते हैं, मैं उनका पाप धोता हूं, लेकिन उन सारे पापों को मैं धोने के लिए रोज यहां पावन सरोवर में स्नान करने आता हूं। तो तीर्थ राज भी पवित्र होने के लिए वृंदावन में पावन सरोवर में आता है। नंद बाबा ये देख के वापस आए, कहा जो मिठाइयां प्रसाद बनाया है ये सब ग्वाल वालों में बांट दो। बोला क्यों नहीं जाएंगे क्या? बोला जाके क्या करेंगे, तीर्थ राज तो यहां स्नान करने आता है, तो हम उधर जाके क्या स्नान करेंगे, तीर्थों का राजा तो यहां आता है स्नान करने पवित्र होने को, तो हम उधर जाके क्या करेंगे, तो सारे ही तीर्थ यहां हैं। सो बात कर रहे थे कि 88,000 ऋषि ही जो तीर्थ में, तो उन्होंने कहा भगवान हम कहां बैठ के लोगों को कलयुग से बचाने का प्रयास करना चाहते हैं, कहां जाके कोई यज्ञ करें अनुष्ठान करें। तो प्रयागराज तीर्थ में एक मंदिर है, उसका नाम है वेणी माधव। श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रयागराज में रहे तो वेणी माधव मंदिर का दर्शन करने गए थे, और वेणी माधव वो प्रयागराज में ही एक घाट है नदी के ऊपर गंगा के, उसका नाम है दस अश्वमेध घाट, जहां 10 अश्वमेध यज्ञ देवों ने किए। उधर 10 दिन तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भक्ति के रस के अमृत का सिंधु दिया, भक्ति रस अमृत सिंधु की शिक्षा वहां बैठ के दी। सो वेणी माधव ने कहा हे ऋषियों, सौनक आदि ऋषियों, ये हमारा सुदर्शन चक्कर आपका मार्गदर्शन करेगा, आप इस चक्कर के पीछे जाओ, जहां ये चक्कर विश्राम करे वहां आप कलयुग को रोकने के लिए प्रबंध करना। आगे चक्कर चला और पीछे ये ऋषि चले, वहां से चक्कर प्रयाग से चल के एक स्थान है जिसका नाम है नयमय शरण्य। ये हमारे पास जो श्रीमद् भागवत है ये नयम शरण्या में सूत गोस्वामी सनकादि ऋषियों को सुना रहे। तो नयम शरण्या में चक्कर धरती के अंदर चला गया पाताल में, और पानी बाहर निकला और चक्कर तीर्थ बना हुआ है, गोल तीर्थ है पानी का, उसका नाम है चक्कर तीर्थ, और उसमें स्नान करने जाते हैं। तो वहां ऋषियों ने बैठ के कहा कि हम यज्ञ शुरू करते हैं, और यज्ञ से भगवान प्रसन्न होंगे विष्णु, तो कलयुग से लोगों को बचाया जाएगा। तो यज्ञ का नियम यह होता है कि दोपहर तक यज्ञ होगा, 2-3 बजे पूर्ण आहुति होगी, तो शाम को कथा होगी यज्ञ में। बोले शाम को कथा क्यों होगी यज्ञ में, कैसे बेकार बात ना हो शाम को, शाम को बैठकर भगवान का कथा सुनना चाहिए। तो सूत गोस्वामी आए, सूत गोस्वामी को सबने कहा हमको आप शाम के समय कोई कथा सुनाओ। तो सूत गोस्वामी ने कहा मैं अभी अभी एक और तीर्थ स्थान का नाम ले रहा हूं, सुकताल। सुकताल गंगा जी के तट के ऊपर, हरिद्वार से दिल्ली की तरफ आते रास्ते में अंदर जाते तीर्थ है बहुत सुंदर, जहां परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई थी, भागवत कथा जहां सुखदेव महाराज ने सुनाई थी वो सुकताल है। और उस वक्त सारे ब्रह्मांड के ऋषि, जहां तक नारद भी कथा सुनने में बैठा था, व्यासदेव भी बैठे थे, नारद जी व्यासदेव, व्यासदेव के पिता पराशर ऋषि भी बैठे थे, और ब्रह्मांड के सारे ऋषि वहां बैठे थे, वहां सुखदेव महाराज भागवत की कथा सुना रहे थे। सूत गोस्वामी कहते हैं मेरे हरे कृष्णा, ये बच्ची भगवान की कथा में शांत रहना सीखो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। सूत गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव महाराज ने मुझे बुला के कहा, बेटा यहाँ बैठो, तुम कथा को ध्यान से सुनो, इस कथा की परंपरा आपको चलानी है तो मैं आपको भागवत कथा सुनाता हूं। तबका सुखदेव महाराज ने कहां से कथा सुनी? सुखदेव महाराज तो ऐसे महात्मा थे जो जन्म के बाद किसी से मिलने को पसंद नहीं थे, ब्रह्म के आनंद में मगन थे। उन्होंने भागवत कथा कैसे सुन ली? व्यास देव ने कहा, मैंने पुत्र को इसलिए उत्पन्न किया था जो मेरे शिष्य के समान मेरे इस भागवत परंपरा का कथा करेगा। लेकिन सुखदेव तो चला गया वन में, तो उन्होंने अपने दो तीन शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक सिखाए। एक दिन एक शिष्य श्लोक गाता हुआ जा रहा था कि पूतना बहुत बड़ी भयानक राक्षसी सुंदर रूप धारण करके अपने स्तन के ऊपर विष लगाकर और कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने उसके विष को नहीं देखा, उसके दूध पिलाने वाले भाव को देखा और उस मारने वाली को भी मां का स्थान दे दिया। इससे बड़ा दयालु कौन होगा? भगवान ने बुराई नहीं देखी पूतना में, अच्छाई देखी कि ये दूध पिला रही है मुझे। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ऐसा कौन हो सकता है जो मारने वाले को भी मां का स्थान दे दे? तो उन्होंने कहा, हमारे गुरुजी को मालूम है। सुखदेव फिर वापस चला गया समाधि में, अपने ब्रह्मानंद में, एकांत में। कुछ दिन बाद एक और व्यासदेव का शिष्य एक श्लोक गाता हुआ जा रहा भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का। मोर मुख पंख लगाते हैं, वैजंती माला पहनते हैं, हाथों में बांसुरी लेकर जब मुख में रख के बजाते हैं और नृत्य करते हुए नटवर, जैसे नटवर शब्द है, नटवर वपु, भगवान का रूप कैसा है नटवर, वैसे भगवान शंकर को कहते हैं नटराज। नट का मतलब डांस करना, डांसिंग को नट कहते हैं, नृत्य करने को, नृत्य का मतलब डांस। सो भगवान शंकर नटराज है, नृत्य करने वालों के राजा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की रास लीला में प्रवेश होने के लिए भगवान शंकर गोपी बनते हैं और गोपेश्वर महादेव के नाम से वृंदावन में पूजे जाते हैं, गोपेश्वर महादेव। सो नटवर का मतलब जिसको नटराज वरण करे, भगवान शंकर जिसका वरण करे। वरण करे का अर्थ क्या होता है? वैसे शादी होती है ना, जो अपने भारतीय संस्कृति वैदिक में, तो उसमें लड़की को वधु बोलते हैं, लड़के को वर बोलते हैं। तो लड़की लड़के का वरण करे, वैसे हमारे शास्त्र में गायत्री मंत्र में कहते हैं वरेण्यम धीमहि, हमारी बुद्धि भगवान का वरण कर, भगवान को अपना स्वामी चुन ले, ये हमारी बुद्धि का धर्म है। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है कि भगवान का वरण करना है, भगवान हमारे स्वामी है। तो ये भगवान कृष्ण की सुंदरता सुनकर सुखदेव महाराज उनके पीछे भागे और व्यासदेव के पास आए और भागवत के 18,000 श्लोक सारे पाठ किया, सारे सीख लिए। और फिर जाकर उन्होंने, कुछ नहीं मुझे पानी वानी नहीं चाहिए, आप कुछ झंझट मत करो, नो जस्ट लिसन, ओनली इफ यू लिसन दैट इज ओनली द बेस्ट सर्विस यू कैन रेंडर। हरे कृष्ण, श्रवण भक्ति का मुख्य अंग है। श्रवण से भगवान के कानों के द्वारा हृदय में भगवान आके बैठ जाते हैं। सुखदेव महाराज ने ऐसे व्यासदेव के कथा सुनी, अब व्यासदेव ने कहां से भागवत सुनी? ये भागवत में प्रश्न उठता है। तब कहते हैं व्यासदेव ने कलयुग के लोगों के लिए एक वेद को चार में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर इन वेदों को समझाने के लिए शाखाएं बनाई, उपशाखाएं बनाई, उपनिषद लिखे। फिर इन वेदों का सार वेदांत सूत्र लिखा। फिर कहा फिर भी ये मजदूरी करने वाले लोग जो लेबर है, ये स्त्रियां जो कभी गुरु के आश्रम में जाके पढ़ नहीं सकती हैं, ये बिजनेसमैन जो सारा दिन अपने काम में लगे रहते हैं, इनको कैसे भला हो, इनके लिए क्या करें। तो महाभारत की रचना की, जिसको पांचवा वेद मानते हैं। पंचम वेद महाभारत को प्रकट कर लिया, जिसमें भगवत गीता को रख दिया, जो सारे शास्त्रों का सार है। लेकिन फिर भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं। बद्री का आश्रम में, व्यासदेव का आश्रम में, और समप्राशन नाम का सरस्वती नदी के पश्चिम तट पे, वेस्टर्न बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, व्यासदेव सरस्वती के किनारे चिंता में है कि मैंने इतने सारे शास्त्र लोगों के लिए लिखे हैं मार्गदर्शन के लिए, मैं ही संतुष्ट नहीं हूं, तो सुनने वाले कैसे सुखी होंगे, पढ़ने वाले कैसे सुखी होंगे। उस देव ना उस वक्त व्यासदेव का गुरु नारद जी वहां पधारे, और नारद जी ने कहा व्यासदेव, आपने शास्त्रों में लोगों को स्वर्ग की लालच दे दी कि तुम्हारे को स्वर्ग मिलेगा, आपने लोगों को और ज्यादा भोग करने के लिए कर्मकांड सिखा दिया, ये पूजा करो ये होगा, ये पूजा करो ये होगा, लेकिन आपने कहीं भी भगवान की महिमा नहीं गाई, हरि कथा नहीं लिखी है। व्यासदेव ने कहा मैंने महाभारत में तो भगवान की वाणी भगवत गीता को दे दिया। बोला सच है, महाभारत आपका अनमोल पुस्तक है, लेकिन मैं कहता हूं कि उसके अंदर भी बहुत सारा कर्म कांड डाल दिया। व्यासदेव अब आप एक काम करो, ये लोग इतने भटक जाएंगे, पंथ बना लेंगे, अलग अलग मंदिर बना लेंगे, अलग अलग पूजा करना शुरू करेंगे, इन लोगों को एक रास्ता मिलेगा ही नहीं कलयुग में। अब आप एक काम करो, समाधि में बैठो और आपके हृदय के ऊपर भगवान की कथाएं लीलाएं सारी अपने आप टेलीविजन के ऊपर जैसे कोई ड्रामा चलता है ऐसे चालू हो जाएगा, और फिर आप बहुत सुंदर कृष्ण कथा का विशेष कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए रचना करो शास्त्र की। व्यासदेव ने नारद जी की आज्ञा पाकर सरस्वती के तट के ऊपर बैठकर भक्ति योग से मन को एकाग्र करके देखा तो हृदय में भगवान दिखाई दिया, और भगवान पूर्ण पुरातन आदि पुरुष दिखाई दिया अपनी सारी शक्तियों के साथ। भगवान अकेले नहीं होते, भगवान की सारी शक्तियां भगवान के साथ होती। तो व्यासदेव ने देखा कि भगवान के पीछे भगवान की माया शक्ति, माया शक्ति को भगवान के आगे आने में लज्जा आती है, वो भगवान के पीछे रहती है। इसका मतलब जो भगवान के आगे होंगे उसको माया नहीं पकड़ेगी, जो भगवान के पीछे जाएंगे भगवान को पीट देंगे उसको माया पकड़ लेगी। माया किसको पकड़ती है, जो भगवान को पीट देता है। इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अनादिकाल जीव कृष्ण बाहर मुख अत माया देता संसार दुख। बहुत समय से लोगों ने भगवान को बुला दिया, कृष्ण को पीठ दे दी है, इसलिए माया ने इनको पकड़ के रखा है। तो क्या सुख का साधन क्या है, बोले भगवान के सामने आ जाओ, अभी भगवान को पीट दिया है इसलिए दुखी हो, भगवान के सामने आप मंदिर में थोड़ी देर जाओ शांति मिलेगी, बाहर निकलो फिर दुख वही बाहर के चालू हो जाए। तो भगवान के पीछे माया है और माया भगवान के पूरे वश में है, भगवान की आज्ञा में है। लेकिन व्यासदेव को उस वक्त आश्चर्य हुआ कि ये सारे जीव माया के वश में है बेचारे, ये हम जीव भी भगवान की शक्ति है, और हम बहुत बड़ी शक्ति है, भगवान की पराशक्ति है, लेकिन सारे जीव माया में बंधे हुए अपना अनर्थ कर रहे हैं। ये जीव सब क्या कर रहे हैं? बोला अपना अनर्थ कर रहे हैं। अनर्थ का अर्थ आता है? अनर्थ का अर्थ आपको आता है? अर्थ का मतलब होता है अपना लाभ, वंस ओन बेनिफिट, उसको कहते हैं अर्थ। अर्थ दम प्रहलाद महाराज कहते हैं, मानव जन्म है अध्रुवम, सदा रहने वाला नहीं है, अर्थ दम, ये बड़ा लाभदायक है, इसमें बड़ा लाभ है। सो अर्थ का मतलब है बेनिफिट, और अनर्थ का मतलब है बिग लॉस और डैमेज। ये लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना हानि कर रहे हैं, अपना दे आर डिग्रेडिंग देमसेल्फ। क्यों? बोला माया ने पकड़ रखा है, अपना अनर्थ कर रहे हैं और जानते भी नहीं है। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया ने सबको पागल रखकर रखा है, अपने आप कोई भगवान के बारे में जान ले संभव नहीं। कृष्ण कृपा कीला, भगवान बड़ा दयालु है। हमको तीन प्रकार से भगवान हमारी सहायता करते हैं। पहले तो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, सबके हृदय में स्वयं रूपे आप खुद बैठे हुए, हमको हमेशा अंदर से बताते रहते हैं तुम ऐसे मत करो, हम नहीं सुनते लेकिन भगवान हमेशा बताते। तमोगुण में हम इतने आलसी होते हैं भगवान की बात सुनते नहीं है, रजोगुण में इतने लालची लोभी भाग दौड़ में होते हैं कि भगवान की बात सुनते नहीं है। भगवान की बात सुने तो भगवान हमारा अंदर से चैत्य गुरु है, अंदर बैठा हुआ है। दूसरा भगवान हमारी सहायता करते हैं, दूसरी भगवान हमारी सहायता करते हैं व्यास देव का अवतार लेके शास्त्र देते हैं, जिसमें हमारे लिए मार्गदर्शन लिखा हुआ है, और बहुत लोग पढ़ते नहीं है शास्त्र, बड़ा दुख है। ये तो प्रभुपाद की कृपा है कि हर भाषा में, अब हर लैंग्वेज में वैदिक लिटरेचर अवेलेबल है। नहीं तो ये मिलना मुश्किल था। हमने देखा कि अगर हिंदी नहीं आती है तो कहां से पढ़ेंगे, तो बोला अंग्रेजी में पढ़ाए, बोला अंग्रेजी फिर नहीं आती अंग्रेजी फ्रेंच में पढ़ाए, जिस भाषा में जिस लैंग्वेज में चाहिए। ये किताब देकर बड़ा ऋषित्व का काम किया है श्रील प्रभुपाद ने, और हम ग्रस्तों के ऊपर एक ऋषि ऋण होता है, ऋषि ऋण कहते हैं। हर ग्रस्ती के घर में 5 मर्डर रोज होते हैं, हत्याएं, झाड़ू निकालते हुए जीव मारते हैं रोज, पानी भरते हुए, आग जलाते हुए, धान में से जीव निकलते हैं, देखें कितने लोग मरते हैं रोज, स्मॉल इंसेक्ट हाउ मेनी वी आर किलिंग एवरी डे। इसलिए हर गृहस्थी को 5 यज्ञ करने होते हैं। एक यज्ञ को बोलते हैं भूत यज्ञ, जैसे जैसे चींटी को दाना डालना, कुत्ते को रोटी देना, गाय को रोटी देना, पहले ये संस्कृति हुआ करती थी। दूसरा अतिथि यज्ञ, कोई मेहमान आए उसको भोजन कराना। तीसरा ऋषि यज्ञ है, ऋषियों ने जो शास्त्र लिखा है उसका अध्ययन करना पढ़ना। चौथा है पितृ यज्ञ, जो माता पिता ने हमारे घर बना के दिया उनकी सेवा करना। और पांचवा है देव यज्ञ, भगवान की पूजा करना घर में, ये सब घर में। तो ऋषि यज्ञ मतलब शास्त्र हमारे को भगवान ने दिया। तो एक परमात्मा के रूप में, एक शास्त्र के रूप में, और तीसरा साधु और गुरु के रूप में भगवान हमारी सहायता करते हैं। इन तीनों का लाभ लेना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए, शास्त्र का रोज पाठ करना चाहिए, और भगवान का रोज नाम जपना चाहिए। तो ये तीनों हमारे को माया से बचाने का प्रबंध कर लेंगे, तब हम माया हमको नहीं पकड़ेगी। तो व्यास देव ने कहा ये बेचारे नहीं समझ रहे हैं कि ये माया में फंसे हुए, लेकिन मैं तो समझ रहा हूं कि ये माया से बहुत बड़े पीड़ित हैं। तब उन्होंने कहा मैंने सात्वत संहिता श्रीमद् भागवत को प्रकट किया। बोला इसका लाभ क्या होगा? बोला श्रवण मात्रे ना, केवल श्रवण करने से, केवल भागवत को श्रवण करेंगे सुनेंगे, कृष्ण परम पुरुष भक्ति उपजायते, भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष के लिए हृदय में भक्ति जागृत हो जाएगी। बोला भगत भक्ति जागृत हो गई तो क्या लाभ होगा? बोला शोक मोह भय अपाह, उसका पास्ट के सारे लेमेंटेशन चले जाएंगे। पास्ट मतलब शोक, शोक होता है जैसे कोई मर जाता है ना तो उसको बोलते हैं शोक सभा। शोक सभा मतलब दुख, किसका जो चीज चली गई, तो जो चला गया है उसका दुख खत्म हो जाएगा। और प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है अभी, प्रेजेंट हाल उसको कहते हैं, वर्तमान का मोह चला जाएगा। अब क्या है, मेरा ये है, मेरे पास रखे ये मोह है, ये चला जाएगा। और फ्यूचर का, भविष्य का भय होता है आगे पता नहीं क्या होगा, ये तीनों खत्म हो जाएंगे। तो काल का प्रभाव ही खत्म हो जाएगा भागवत को पढ़ने से। तो हम श्लोक निकाला था आज का, इस श्लोक का आप हमारे साथ पाठ कर लीजिए। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदयान्तस्थानि अभद्राणि विदनोति सहृद सताम। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, अगर जीवन में कभी सुनना हो तो कृष्ण कथा सुने। जो श्री कृष्ण ने कही है भगवत गीता, या भगवान श्री कृष्ण की कथा भागवत में कही गई है, उसको सुनो। क्या होगा पुण्य, जीवन में पुण्य होगा, पायस, ये बहुत बड़ा पुण्य करेगी जीवन में। असल में जीवन में पुण्य क्या होता है, पुण्य होता है साधु का संग। कथा कौन सुनाएगा, भगवान का भक्त सुनाएगा ना। तो जिसके जीवन में पुण्य उदा हुआ, भगवत गीता का श्लोक है, अंतगतम जनानाम अंतगतम पापम, जिसके पाप नाश हो गए, अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिसके पुण्य उदय हुए, पुण्य उसके उदय होते हैं जिसको भक्तों का संग मिलता है, साधु का संग मिलता है, जिसको हरि कथा मिलती है उसका पुण्य उदय हुआ, उसका सौभाग्य हुआ। तो क्या लाभ क्या होगा, हृदयंत स्थान या भद्राणी, दिल के अंदर अंदर हृदय में जो भी अभद्र कहते हैं इन आस्पिशियस थिंग्स, जो बेकार चीजें हैं, अमंगलकारी हैं, अमंगल हरि, अमंगल को हरण करने कर लेता है, अशुभ जो चीजें धुनोती उन सबको धो लेता है। कौन, भगवान, किसके, भक्तों के। जो भगवान की कथा सुनेगा, भगवान उसके हृदय में अनादि काल से जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, एनवियसनेस है, ये सब धो के साफ कर देगा, हृदय साफ कर देगा। कौन करेगा, भगवान करेगा। कब करेगा, जब कृष्ण कथा सुनेंगे। सो कृष्ण कथा जीवन में सबसे बड़ा पुण्य है। अगर हमारे भाग में कृष्ण कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त करे तो कहते सो काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, सुबह उठ के सब काम छोड़ के पहले स्नान करना चाहिए, हजार काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, काम कितने भी हो लेकिन समय से भोजन करना चाहिए, मौजे समय से होना चाहिए पक्का। लाख काम, करोड़ काम, मिलियन सब काम छोड़ के भजन करना चाहिए, भगवान का नाम सब काम छोड़ के करना चाहिए, मुख्य सबसे वो है, क्योंकि उसमें हमारा हित है। ये व्यासदेव ने कहा कि सब अपना अहित कर रहे हैं, अपना लॉस कर रहे हैं, अपना बेनिफिट नहीं कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ ये है, एवरीबडी इज वर्किंग सिंपली फॉर द बॉडी, nobody is interested in the real benefit of the soul. शरीर के लिए तो सब हर समय काम कर रहे हैं लेकिन आत्मा का चिंतन का बहुत बड़ा अभाव है, यह सबसे बड़ा दुख है। सुबह से शाम तक शरीर, ओनली फॉर दी बॉडी, वर्किंग फॉर दी बॉडी, एंड दिस बॉडी nobody want to keep a day in a home when soul leave the body. मरे हुए का शरीर एक दिन कोई घर में नहीं रखता,
और जिस सोल के कारण ये शरीर चल रहा है आत्मा के, उस सोल के विषय में कोई को जानकारी किसी को नहीं है, न स्कूल में है न कॉलेज में है। तो हमारा अपना क्या लाभ, व्हाट इज अवर बेनिफिट, वी डोंट नो। भागवत के महात्म में तो लिखा है कि मानव जन्म प्राप्त करके भागवत नहीं पढ़ा तो पशु जैसा जीवन है, क्योंकि कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए भगवान भागवत के रूप में कृष्ण का अवतार हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग में भागवत के रूप में अवतार हुआ है। भागवत की कथा 7 दिन बैठ के सुननी चाहिए, 15 दिन बैठ के सुननी चाहिए। कृष्ण कथा ही जीवन का सार है, लाइफ लाइन है, नहीं तो मुर्दे घूम रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते जीव जागो जीव जागो, गौर चंद्र बोले अरे जीव जागो क्या, ये तो चल रहे हैं। बोला चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा के बारे में नहीं जान रहे, अपनी आत्मा का हित नहीं जान रहे हैं। तो ये स्पिरिचुअली दे आर स्लीपिंग, मटीरियली दे आर वेरी अवेकन, लेकिन स्पिरिचुअली दे आर ब्लाइंड, अंधे हैं, आत्मा का चिंतन नहीं है। जिसके सहारे हम जी रहे हैं उस आत्मा के बारे में पता नहीं है और शरीर को सजा रहे हैं। ये तो तोते को कुछ नहीं खिलाए और पिंजरे के ऊपर 1000 रुपया खर्च करके और सोना चांदी लगाए तो क्या लाभ। डेकोरेटिंग द केज एंड नॉट फीडिंग द बर्ड, व्हाट इज द बेनिफिट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ आगे कथा करेंगे के विश्राम करेंगे? हाँ, क्या विचार है, किसी का कोई प्रश्न है? आज हम कथा में सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जीवन में भागवत नहीं पढ़ा तो मानव जन्म व्यर्थ है, तो जीवन में भागवत पढ़ना चाहिए, ये मुख्य बात कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की एक द्वारका लीला की कथा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में रह रहे थे, उस दशम स्कंद के अंत में एक बड़े ऋषियों का, सारे ऋषि इकट्ठे हो गए और ऋषियों ने ये आपस में चर्चा करने लगे, ऋषि सब मिलकर, कि देवी देवता तो बहुत सारे हैं और मुख्य रूप से तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो किसका हमको भजन असल में करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, क्योंकि एक का जब तक शरण नहीं लेंगे तब तो संसार में परेशान रहेंगे, एक का शरण तो लेना ही पड़ेगा। ये तो भगवत गीता का श्लोक है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक एक कुरु नंदन बहु शाखा अनंतास बुद्धि अव्यवसायी नाम। जिसको जीवन के लक्ष्य का पता नहीं है, इधर उधर भटकता है, कुछ हाथ नहीं आएगा। भगवान को हाथ में करना है तो फिर मुख्य है भगवान को प्राप्त करने के लिए, कैसे भी हमको एक भगवान का चरण पकड़ना चाहिए। तो सबने कहा, ऋषियों ने, कि कौन जाएगा भगवान की परीक्षा लेने के लिए। तो भृगु ऋषि को कहा कि आप जाके परीक्षा लेके देखो कि कौन है तीनों में से जिसकी हमको आराधना करनी चाहिए। तो असल में भृगु महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो ब्रह्मलोक में चले गए। तो ब्रह्मलोक में जब गए तो नहीं किया प्रणाम, सिर्फ प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया, बोला बेटा है बाप को प्रणाम नहीं करता है, आपको कितने बेटे रोज प्रणाम करते हैं, आपके बाबा कोई करता है पांव पड़ता है क्या बच्चे ना? तो ब्रह्मा जी बेचारा क्या करे, सबका ये हाल है ये क्या करेगा ब्रह्मा जी, सबका ये हाल है। अरे कृष्णा क्यों नहीं जाग रहा? तो ब्रह्मा जी बहुत क्रोध किया कि तुम बेटा होके मेरे पास आए हो और प्रणाम तक नहीं किया। भृगु यहां से चला शंकर जी के पास, चला गया कैलाश में। तो शंकर जी का भाई लगता है क्योंकि शंकर जी का प्रकट्य ब्रह्मा जी के मस्तक से हुआ है। वैसे तो भगवान सदाशिव शंकर तो विष्णु का रूप है इस प्रकृति के लिए, लेकिन फिर भी शंकर जी ने कहा आओ भैया आओ, आपका स्वागत है, आप आए आओ गले मिलो। भृगु ने तो परीक्षा लेनी थी, उसका एग्जामिन करना था। बोला आप शमशान का भभूत लगाया हुआ है, ये भीचू है, गले में सांप पड़ा है, आपको गले कौन मिलेगा, मैं तो ऋषि हूं। अरे शंकर जी को क्रोध आया और उठाया त्रिशूल और भृगु के पीछे भागा। और पार्वती ने कहा कि नहीं नहीं ये तो भाई है आपका, छोड़ो। यहां से भागा गया भगवान विष्णु के लोक में। लक्ष्मी देवी चरण दबा रही थी, भृगु ने जात के कुछ नहीं किया, सीधा भगवान विष्णु की छाती पे लात मार। भगवान विष्णु ने भृगु का चाऊ पांव पकड़ के कहा हे ब्राह्मण देवता, आपको हमने स्वागत नहीं किया उठ के, आपका इतना ये चरण कमल कोमल है और हमारी छाती तो पत्थर जैसी वज्र जैसी है, आपको चोट तो नहीं लगी? और भृगु कहता है मेरे राम, एक को केवल शरीर से अपमान किया क्रोधित हो गया, एक को वाणी से किया क्रोधित हो गया, मेरा चरण को चोट तो नहीं लगी। और उस वक्त लक्ष्मी माता को बहुत क्रोध आया, कहा हे ब्राह्मण तेरे घर में मैं कभी नहीं आऊंगी। बोला ब्राह्मण तू तो भिखारी रहेगा। लक्ष्मी ने कहा तेरे घर में आने वाली नहीं हूं। और भृगु ने कहा मैं आपको प्रणाम है, मैं ऐसा ज्योतिष का भृगु शास्त्र लिखूंगा कि लक्ष्मी लोग ब्राह्मण के पांव में डाल के जाएंगे, ब्राह्मण को मांगना भी नहीं पड़ेगा। तो भृगु वहां से लौट के जब आया तो भृगु ने बताया कि मैं गया था, ये स्थिति है कि रजोगुण के प्रभाव के कारण ब्रह्मा जी केवल रजोगुण के काम करते हैं सृष्टि का, लेकिन फिर भी मैं पुत्र हूं, उनका अपमान किया तो उनको क्रोध आ गया। शंकर जी वैसे समाधि में रहते हैं या हरि कथा करते रहते हैं, परम वैष्णव है, लेकिन फिर भी मेरे अपमान करने के भाव के शब्दों से क्रोधित हो गए। लेकिन भगवान विष्णु इतने उदार है कि मैं लात मारी, इसलिए वैकुंठ में जितने भी रहते हैं सब चतुर्भुज रूप में है। तो सिर्फ दो चीजें हैं जो भगवान विष्णु के अंदर है और किसी में नहीं है, एक तो ये जो लेफ्ट साइड है छाती की, वहां गोल्डन हेयर है, उसको कहते हैं श्री वत्स चिन्ह, लक्ष्मी का निष्ठा स्थान है, और दूसरा भृगु चरण चिन्ह, भृगु ने लात मारी है वो जगह है, वो और किसी के और किसी वैकुंठ में और किसी की छाती पे नहीं है। तो वो वापस आके भृगु कहते हैं आराध्य देव सबके लिए, बाकी सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन भजन मार्ग का मतलब होता है सेवा करना, भजन का मतलब है सेवा करना, तो सेवा तो भगवान नारायण की करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़े सहनशील है, जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है इसलिए महाप्रभु ने कहा तृणादपि सुनिश्चेना, जिसके जीवन में सहनशीलता हो, अगर हमारे जीवन में सहनशीलता आ जाए ना तो बहुत समस्याएं और झगड़े समाप्त हो जाए। और सहनशीलता आएगी कैसे जीवन में, जो भगवान स्वयं शांत है, हमेशा शांत रहते हैं भगवान विष्णु, या भगवान श्री कृष्ण जो हमेशा आनंद में रहते हैं बांसुरी बजाते, उनका शरण ले लेंगे, चरण पकड़ लेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा सहनशीलता आ जाएगी। टॉलरेंस जिसके जीवन में नहीं है उसके जीवन का लाभ क्या? एक बहुत अच्छी सभ्य लड़की 22-25 साल की बस में बैठी थी, उसके पास में एक बहुत झगड़ालू मोटी सी माता जी आके बैठी, उसको धक्का दे के हटाई, उसकी सीट से हटा दिया। तो किसी ने कहा, आप कुछ नहीं कह रही हो, ये आपको इतनी परेशान कर रही है। बोला, आधे घंटे का भी सफर नहीं है बस का, आधे घंटे के बाद उतर के चले जाएंगे, थोड़े दिन थोड़े टाइम की बात है, काहे के लिए झगड़ा करें, इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत अच्छा शब्द कहा कि कितने दिन हम साथ हैं इस दुनिया में, थोड़े दिनों के लिए साथ है, काहे के लिए झगड़ा करें इतना बड़ा, क्यों एक दूसरे से जवान से खराब बोले, कितना कितना समय साथ रहना है। तो ये जीवन में जब तक सहनशीलता नहीं आएगी, उदारता नहीं आएगी, तब तक जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। और ये आती है सिर्फ देवताओं के सारे अच्छे गुण भक्त के अंदर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। सारे देवताओं के गुण, सारे अच्छे गुण भक्त के जीवन में आने चाहिए, तभी जीवन उसका सफल कहना चाहिए, तभी उसको भक्त मानना चाहिए। सुरा समास तह देवताओं के सारे गुण भगवान के भक्त में आ जाते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण की भागवत को, वैसे तो आप एक दिन और भी आना है ना, अभी और परसों आना है ना, कल अपने प्रभु आएंगे, गुरु शक्ति प्रभु आएंगे, तो कुछ भागवत भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीला है। वृंदावन में तो केवल 11 साल तक है, और वो लीलाएं तीन विभाग में है। गोकुल में बाल लीला है, जो भगवान को अपना बालक मानते हैं वात्सल्य प्रेम के भक्तों के लिए। वृंदावन में आते हैं जब भगवान 3 साल पूरे करके 4th साल में आ गए, तो भगवान की सखाओं के साथ ग्वाल बाल लीला है, वो उन भक्तों के लिए है जो भगवान को अपना मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं। और भगवान की 7 साल के बाद गोवर्धन धारण करने के बाद भगवान की जो गोपियों के संग में लीलाएं हैं, वो है माधुर्य रस की लीलाएं। तो तीन विभाग है भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का। भगवान श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य न तो धर्म स्थापन करना है, न ही असुरों को मारना है। भगवान का उद्देश्य श्री कृष्ण का केवल अपने साथ में गोलोक धाम से बड़े गोप गोपियां लाते हैं, उनके साथ बाल लीलाओं में वात्सल्य प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, जिनके मन में बालक करके कृष्ण को पूजने का इच्छा हो वो उसका सुख ले ले। फिर भगवान श्री कृष्ण 4 साल से 7 साढ़े 7 साल तक अपने फ्रेंड्स के साथ, सखाओं के साथ गौचारण लीला करते हैं, वत्सचारण लीला करते हैं। उसमें कहते हैं, मित्र बनाना है, फ्रेंड बनाना है तो मुझको बना लो, देखो मेरे फ्रेंड पाप के मुंह में चले गए थे अघासुर के, मैं वहां से निकाल के आया, इनके ऊपर इतने देवताओं ने क्रोध किया, मैंने उनकी रक्षा की, तो मेरे जैसा मित्र आपको नहीं मिलेगा दुनिया में, फ्रेंड बनाना है तो मुझको बना। और 7.5 साल के बाद, भगवान की उम्र तो 7.5-8 साल है, तब वो गोपियों के संग में माधुर्य लीला का प्रदर्शन करते हैं कि आपको प्रेमी बनाना है जीवन में। वैसे एक महात्मा ने लिखा कि जीवन में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का एक उद्देश्य है प्रेम का पाठ पढ़ाना। जैसे भगवान रामचंद्र है मर्यादा पुरुषोत्तम, वो मर्यादा सिखाते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन, भाइयों के साथ प्रेम कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसे अपने धर्म को निभाए, गुरुजनों का आदर कैसे करना चाहिए, और जंगल में रहने वाले की निषाद कोल भील उनसे कैसे प्रेम से व्यवहार किया जाए, ऋषियों का संग कैसे किया जाए, ये मर्यादा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है, वो प्रेम सिखाना आते हैं कि दुनिया में सबको प्रेम करना पड़ता है, प्रेम के बगैर तो दुनिया में कोई रहता ही नहीं है। वैसे प्रेम ही एक धर्म है दुनिया में, धर्म एक प्रेम है, और रिलीजन बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन धर्म प्रेम के अलावा और कोई नहीं है। देयर इज ओनली वन रिलीजन, साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड। सो कृष्ण कहते हैं कि प्रेम को सिखाने के लिए दुनिया में कोई पाठशाला नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं, और सारे मूर्ख प्रेम करने में गलती करके परेशान हो जाते हैं। दे लव हियर एंड देयर एंड दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। सो मैं ही जाके उनको प्रेम सिखाऊंगा कि माता पिता को बच्चे से कैसे प्रेम होना है, होता है, फ्रेंड्स का फ्रेंड के साथ कैसे प्रेम होता है, और प्रेमिकाएं अपने प्रेमी के लिए क्या क्या कर सकती है, कैसे सब कुछ छोड़ सकती है। तो मैं प्रेम सिखाने जाता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है, रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। वो प्रेम सिखाने के लिए आए, वो प्रेम जो हमारे हृदय में भगवान ने भर के घर से भेजा है। जब हम आए भगवान के वहां से तो सबके दिल में भगवान ने प्रेम भर के भेजा है, कोई दिल प्रेम से खाली नहीं है। लेकिन हमने उस प्रेम में, जैसे दूध के अंदर नींबू डाल दोगे लेमन तो दूध खराब हो जाएगा, ऐसे हमने प्रेम के अंदर काम डाल दिया। इंस्टेड ऑफ लव वी हैव ट्रांसफॉर्म दैट, एक्चुअली ट्रांसफॉर्म भी सही शब्द नहीं है, विकृत हो गया। विकृत मीन्स एक्चुअली डिसफॉर्म्ड। तो प्रेम जो भगवान ने अपने लिए दिया था उसको दुनिया में हमने काम में परिवर्तित कर दिया है, बिगाड़ दिया है, विकृत कर दिया। तो मानव जन्म में उस प्रेम को जो भगवान ने हृदय में भर के दिया था उसको वापस भगवान की ओर मोड़ना है, तब हम सुखी हो जाएंगे। दुनिया की ओर प्रेम करने का प्रयास करेंगे तो वो प्रेम हमेशा बिगड़ के काम का रूप धारण कर लेगा। प्रेम की, प्रेम कहते किसको है? बोला जिसको प्रेम करो उसको सुखी देखने के लिए कुछ भी करना पड़े तो करेंगे, इसको कहते हैं प्रेम। बोला काम किसको कहते हैं? बोला इससे मुझे क्या फायदा होगा, मुझे इससे क्या सुख मिलेगा। अब दुनिया में आप देखो जिससे भी आपका रिश्ता नाता है आप कहते इससे मुझे क्या सुख मिलेगा, मुझे इससे क्या सुख मिलेगा, ये काम। एक दुनिया में प्रेम करती है मां जब बच्चा छोटा होता है ना, तो बेचारी दुख कोई भी भोगने को तैयार है लेकिन बच्चे को सुखी देखना चाहती। लेकिन आजकल अब बच्चा ही नहीं पैदा करती है, सुखी कहां से करेंगे, बहुत बड़ी परेशानी हो गई, बहुत बड़ा दुख की बात है असल में। कि भगवान अच्छा दुनिया में कहां से भक्त आए धरती के ऊपर, कोई बच्चा पैदा ही नहीं करना चाह रहा है, बहुत बड़ा दुख की बात है असल में। आज से 40 साल पहले हर एक के घर में 4-5 बच्चे खेलते हुए नजर आते थे, आप देखेंगे तो अपने भाई बहने 5-7 होंगे लेकिन आपके घर में एक होता है, और एक को संभालना मुश्किल हो गया है, और आपके दादाओं ने 10-10 संभाले, और तब उनके पास ऐसे घर भी नहीं थे, गाड़ियां भी नहीं थी, तब भी वो बच्चे संभाल सके थे और सुखी थे। और अब एक है उसको भी संभालना, और वैसे भी वो काम तो आना नहीं है उसको, आज नहीं तो कल या जाना है ऑस्ट्रेलिया जाना है या इंग्लैंड जाना है, आपको तो फिर घर में ऐसी चार पाइप के ऊपर बूढ़े मरना है, कुछ होना तो नहीं है, तो काहे के, अरे 5-10 होता तो एक आधा चला जाता, एक तो देखभाल करता कम से कम, वो एक आधा कोई साधु बनता उसके कारण, बाकी सबका उधार तो हो जाता। तो क्या कर दिया है आपने, ये कहां से बीमारी आ गई समझ में नहीं आया हमको। तो इसीलिए दुनिया में क्योंकि ग्रस्त भगवान के सृष्टि के कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोई अच्छे साधु महात्मा धरती के ऊपर जन्म कहां ले अब, नहीं तो मां जितना प्रेम करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, उसको प्रेम कहते हैं। दूसरा गुरु होता है जो शिष्य को भला, शिष्य को सुखी देखना चाहता है कि इसका हित हो जाए, ये जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए, और भगवान है जो सौहृदय, जो सबसे प्रेम करता है। तो प्रेम करना हमारा धर्म है, और प्रेम करना सिखाया यशोदा ने, कैसे कृष्ण से प्रेम करती है। ग्वाल बाल के कितना कितना ग्वालों का प्रेम है कृष्ण के साथ, कि पूतना आई, तृणावर्त आया, शक्टासुर आया और दो पेड़ गिरे, तो सब गोपू ने ये निर्णय किया, फैसला किया, डिसीजन लिया कि हमारे छोटे बालक को यहां डेंजर है, खतरा है, इसलिए हम गोकुल को छोड़ देंगे। जमीन को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, बस अपनी गाय लिया और वहां से चले गए। क्यों? पर एक हमारे बालक को यहां कष्ट हो रहा है, ही इज इन डेंजर, वी डोंट वांट टू सी डेंजर टू अवर चाइल्ड। इसको बोलते हैं प्यार। प्रेम इसको है कि उस बच्चे से इतना प्रेम था कि घर खेत सब कुछ छोड़ दिया गोकुल का, और अपनी बैलगाड़ी में बस निकल दिए वहां से, चलो वृंदावन चलते। इसको प्रेम कहते। ये माता पिता का प्रेम है। सखाओं का प्रेम क्या है कृष्ण के लिए? वो भक्त कहते हैं कि ये क्या क्या है, जो भी है अघासुर का पेट है, अरे हमारा कृष्ण है ना, हमारा क्या बिगड़े बैठा है ना कृष्ण। इतना उनको विश्वास था कि ये हमारा मित्र, हमको पाप के पेट में जाएंगे तो वहां से भी निकाल के आएगा। और सब अंदर चले गए, भगवान भागते हुए अंदर गए और उनकी रक्षा करके निकाल के आए। और मित्रों के लिए, पूरे परिवार के लिए संकट आया, इंद्र जैसा देवता क्रोध करने लगा, तो सात दिन तक हाथ के ऊपर गोवर्धन को धारण कर लिया। ये है प्रेम। अरे सबने कहा आपका हाथ थक गया होगा कन्हैया, अरे आपका हाथ नीचे उतारो, थोड़ा इसको मसाज कर दें। और भगवान ने कहा आपको अगर कुछ सहायता करनी है तो अपने डंडे वंडे लगा लो, और मेरे को कोई जरूरत नहीं है। इससे भगवान क्या कहते हैं कि आपका काम सारा मैं करता हूं, लेकिन अपना डंडा तो कम से कम लगा लो, कुछ तो आप भी प्रयास करो। मैं आपका सभी कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा प्रयास तो आप भी करो। और प्रेम करने वाले भगवान ऐसे हैं जिनके प्रेम करने वाली हैं गोपियां, जो संसार की लोक लज्जा को, पाप ताप संताप सबको छोड़ के भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए चले। इसको प्रेम कहते हैं। कृष्णा इंद्रिय तृप्ति नाम धरे प्रेमा। भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए क्यों किया जाता है, उसको प्रेम कहते हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति नाम धरे काम। अपने सोने और लोहे जितना अंतर है दोनों में। सो अपने जीवन में प्रेम को प्रकट करो, और प्रेम प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोला दो काम करने पड़ेंगे। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। जब भगवान की कथा सुनेंगे और भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम भगवान ने भर के भेज दिया है वो जागृत हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। और जैसे वो प्रकट हो जाएगा आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। संकट आएगा लेकिन आपको परेशान नहीं कर पाएगा। संकट आएगा जरूर लेकिन आपको परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको भगवान का सहारा हो जाएगा, भगवान आपका शेल्टर हो जाएगा। जब हम भगवान का शेल्टर लेते हैं तो गोवर्धन पहाड़ की तरह कोई भी दुख आता है भगवान अपने ऊपर ला लेते हैं और भक्त को सहने नहीं देते। हरिदास ठाकुर को 21 बाजारों के अंदर जब काजी के लोग कोड़े मार रहे थे तो हरिदास ठाकुर कह रहा था भगवान ये बेचारे इग्नोरेंट है, अनजान है, ये जानते नहीं है, इसको क्षमा कर दो। मार रहे थे उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरिदास उस दिन मैं इन काजी के आपको कोड़े मारने वालों को मारने के लिए आया था कि वो आप भक्त का अपराध कर रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इनको फर्गिव कर दो, इनको क्षमा कर दो। तो मैंने कहा इनको आप कह रहे हैं क्षमा कर दो लेकिन आपको इतनी पीड़ा दे रहे हैं तो क्या करूं। तब कहते हैं चैतन्य महाप्रभु हरिदास आपकी पीठ के ऊपर मैं पूरा चादर बन के चपक गया। और फिर महाप्रभु ने अपनी चादर हटा के दिखाया, देखो ये कोड़े मैंने मेरी पीठ के ऊपर खाए, तुमको लगने नहीं। मैं महाप्रभु ने अपनी पीठ के ऊपर कोड़ों के निशान दिखाए कि मैंने खाए हैं, क्योंकि तुम उनका भला चाह रहे थे, तो मैं अब तुम्हारा कैसे अहित कैसे कर सकता हूं, तुम्हें कैसे पीड़ा दे सकता हूं। तो इसको कहते हैं भगवान कैसे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, किससे करते हैं, जो दूसरे का भला करता है। प्रभुपाद जी दूसरों का भला करने के लिए गए तो प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद ने के लिए पूरे विश्व के अंदर ये इतना बड़ा भगवान ने साम्राज्य तैयार कर दिया, जिस जो आज कहते हैं किसी वक्त में ब्रिटिश के ऊपर सनसेट नहीं होता था, आज प्रभुपाद जी के मंदिरों की मंगल आरती के ऊपर सनसेट नहीं होता है, पूरी दुनिया में हर समय हरे कृष्णा कीर्तन हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धन्यवाद बहुत बहुत। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, हमारे कथा सा एक ही बात आपको ले जाओ साथ में, भागवत जीवन में पढ़ो। भागवत पढ़ोगे तो मानव जीवन में आपको सबसे दुर्लभ लाभ हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद।